आयु ने आरव से अपनी शादी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था। वो जानती थी कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो बेहतर है कि हालातों से समझौता कर लेना चाहिए। वैसे भी आरव इतना बुरा नहीं था, उन दोनों के बीच कितनी भी बहस हो जाए, लेकिन जब भी आयु उसके पास आती थी तो उसे अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता था। शादी की पहली रात को आयु ने चेंज करके आरव का शर्ट पहना था। आरव को लगा आयु उसे अपने पास नहीं सोने देगी, लेकिन आयु ने उसे अपने पास लेटने से रोका नहीं। आयु की ये बोल्डनेस देखकर आरव हैरान था। आयु के इतना कंफर्टेबल होने पर आरव ने उसे परेशान करने के लिए कहा, तुम्हें मेरे पास आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही बेड पर साथ लेटने से, तो फिर बाकी चीज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है, तो क्यों ना आगे बढ़ें। आयु उसके कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और उसे तकिया मारते हुए बोली, ज़्यादा ना, फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। पास सोने दे रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आएं। वैसे भी तुम एक रात के लिए ही मेरे साथ सोओगे, अगली सुबह तुम्हारे सारे ख्वाब टूट जाएंगे, तो सोचा तुम्हें सोने देती हूँ ताकि आगे से तुम मुझे ये ना कहो कि मुझे तुम्हारे साथ सोना है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? आरव ने हैरानी से पूछा। अचानक ही आयु के चेहरे पर ईविल स्माइल थी और वो लेटते हुए बोली, मतलब कल सुबह तुम खुद समझ जाओगे मिस्टर खुराना, नाउ गुड नाइट एंड स्लीप वेल। आयु ने अपने साइड की लैंप की लाइट बंद कर दी थी। आरव उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोला, पता नहीं क्यों इसकी बातें सुनकर डर सा लग रहा है। लास्ट टाइम भी ये बोल्ड थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही खुराफाती लग रही है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं एक और आरव खुराना को नहीं टॉलरेट कर सकता, तो बेहतर होगा मिसेस खुराना तुम्हें जल्दी से सब कुछ याद आ जाए और तुम पहले की तरह डिसेंट बन जाओ। आरव ने फिर अपने साइड की लैंप लाइट बंद की और सोने के लिए चला गया। कुछ ही देर में दोनों नींद के आगोश में थे। वहीं दूसरी तरफ आशी और निर्वाण भी कश्यप हाउस पहुंच चुके थे। आयु की तरह आशी का भी ग्रैंड वेलकम किया गया था। निर्वाण की शादी में सिर्फ उनकी फैमिली ही मौजूद थी, लेकिन आगे रिसेप्शन पार्टी के लिए सबको इन्वाइट किया गया था, तो उनके बाकी फैमिली मेम्बर भी आ गए थे। किसी को भी आयु के बारे में नहीं पता था, सब आशी को ही निर्वाण की दुल्हन समझ रहे थे। निर्वाण का चेहरा उतरा हुआ था। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद निर्वाण और आशी को कमरे में भेज दिया गया था। उनका रूम फर्स्ट वेडिंग नाइट के हिसाब से डेकोरेट किया गया था। वहां आते ही आशी अनकंफर्टेबल होने लगी, वो नजरें झुकाकर खड़ी थी, तो वही ऐसी ही कुछ हालात निर्वाण की थी। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े ऐसे ही बेड को देखते रहे, फिर दोनों अचानक से एक साथ बोले, इसे हटा देते हैं। एक साथ बोलने की वजह से वो दोनों फिर से ऑकवर्ड हो गए थे। निर्वाण कुछ पल रुक कर बोला, तुम उसे पसंद करती थी ना? हाँ, लेकिन अब क्या फ़ायदा है, आप भी तो आयु से प्यार करते थे, आशी ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। निर्वाण ने आगे कुछ नहीं बोला और बिस्तर पर लगे फूलों को हटाने लगा। आशी उसके पास आई और उसकी हेल्प करने लगी। ड्रेस हैवी होने की वजह से आशी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो निर्वाण बोला, मैं कर लूँगा, तब तक तुम जाकर चेंज कर लो। आशी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। आशी कुछ कदम आगे पहुँची ही थी कि उसे चक्कर जैसा महसूस हुआ। निर्वाण का ध्यान आशी पर ही था। वो लड़खड़ाकर गिरती उससे पहले निर्वाण ने उसे थाम लिया। निर्वाण उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला हूँ, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल पहले की तरह होगी। कुछ खाया तुमने? निर्वाण उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए काफ़ी प्यार से बात कर रहा था, वैसे भी वो एक सुलझा हुआ इंसान था। आशी ने नामे सिर हिलाकर धीरे से कहा, मॉम ने कहा था कि हमारे यहाँ लड़की फेरों के बाद ही कुछ खाती है, शादी में सब गड़बड़ हो गया तो कुछ भी खाने पीने का मौका ही नहीं मिला। निर्वाण ने तुरंत उसके लिए नीचे से खाना मंगवाया। खाना आ रहा था इतनी देर में निर्वाण उसकी ज्वेलरी निकालने में हेल्प करने लगा। निर्वाण पूरी कोशिश कर रहा था कि गलती से भी वो आशी की बॉडी को टच न करे। निर्वाण ने जब उसकी सारी ज्वेलरी निकाल दी, तब उसने उसका सूटकेस निकाला और एक कंफर्टेबल ड्रेस दिया। अचानक ही आशी जोर जोर से रोने लगी। आशी सुबकते हुए बॉडी, सब कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसा कोई होता है क्या? आपकी जिसके साथ शादी होने वाली हो उसकी शादी किसी और से हो जाए और आपकी शादी किसी और से? देखिए, मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं आरव को पसंद करने लगी थी, डेस्टिनी को ये गेम मेरे साथ ही खेलना जरूरी था क्या? निर्वाण आशी की हालत समझ सकता था। इस वक्त वो भी वही फील कर रहा था, बस उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे और ना ही वो आशी की तरह खुलकर अपनी बात को नहीं बोल रहा था। निर्वाण ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और उसके पास बैठते हुए बोला, मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। आई नो तुम्हारी फैमिली में किसी का डिवोर्स नहीं हुआ होगा, पर मैं मिस्टर ओबेरॉय से बात करके उन्हें समझाऊंगा। वो नहीं माने तो हम 6 महीने बाद डिवोर्स ले लेंगे, और यकीन करो कि मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से करवाऊंगा। निर्वाण को आशी को शांत करने के लिए जो समझ आया उसने वो कह दिया। आशी कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में उनका खाना आ गया तो निर्वाण ने उसे खाना देते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ, पर जो हो चुका है उसे हम दोनों ही नहीं बदल सकते। शायद ऐसी ही कुछ हालात आरव और आयु की होगी। चलो अब खाना खाओ और आराम करो, कल अपने आप थोड़ा बेहतर लगने लगेगा। आशी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आशी खाना नहीं खा रही थी तो निर्वाण उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। कुछ ही देर में आशी ने महसूस कर लिया था कि निर्वाण के बारे में आयु सही कहती थी, वो एक जेंटलमैन था, खुद इतना परेशान होने के बावजूद आशी की परवाह कर रहा था। आशी को खाना खिलाने के बाद निर्वाण ने उसे चेंज करने के लिए भेज दिया। आशी चेंज करके बाहर आई, तब तक निर्वाण ने कमरे से फूल और बाकी सब डेकोरेशन हटा दी थी। उसने आशी को बेड पर लेटने का कहा और खुद काउच पर सोया हुआ था। दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी और अचानक हुए इस एक्सीडेंटल मैरिज के बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ आरव और आयु का अलग ही हाल था। अगली सुबह जब आरव की आंख खुली तो आरव आधा बेड से नीचे लटका हुआ था और आयु के पैर उसकी चेस्ट पर थे। अब उसे समझ आ रहा था कि आयु ने रात को उसे ये क्यों कहा था कि वो आगे से उसके साथ सोने के बारे में सोचेगा तक नहीं। आरव ने उठने की कोशिश की तो उसकी कमर में भयंकर दर्द हुआ। आयु की इस हरकत पर वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। कसम से कह रहा हूँ, अगर पिछले जन्म में हमारा कोई रिलेशन ना रहा होता तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हारी जान ले लेता मैं मिसेस खुराना, आरव ने उसे गुस्से में देखते हुए बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा।